राधिका ने ईशिका को केशव सिंघानिया से मिलने के लिए हाँ कह दी थी। केशव ही राधिका का बायोलॉजिकल फादर था। राधिका के हिसाब से ईशिका का पूरा हक बनता था कि वो अपने पिता के बारे में जाने। हाँ, केशव और उसके बीच में जो भी लड़ाई थी वो पुरानी बातें थी और उसमें ईशिका की कोई गलती नहीं थी। इस वजह से राधिका उसे पूरी तरह आज़ाद करना चाहती थी। वहीं राधिका के हाँ कहते ही अरमान ने जल्दी से ईशिका से कहा, अब तो तुम्हारी मॉम ने भी हाँ कह दिया है, चलो जगह और टाइम तुम डिसाइड कर देना, बता कहाँ मिलने का सोचा है। ईशिका ने कुछ पल रुककर कहा, भले ही मेरी माँ ने हाँ कह दिया है लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं चाहती। जब वो खुद मिस्टर सिंघानिया से मिलना नहीं चाहती है तो वो ये भी नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी जाकर उनसे मिले। ईशिका का जवाब सुनकर राधिका चौंक गई थी। उसकी जगह आज आयशा होती तो वो दौड़ी चली जाती या फिर खुद इस वक्त राधिका को मना रही होती कि वो केशव से मिलने चले। ईशिका ने राधिका की तरफ देखा और कहा, माँ अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहती हैं तो फिर मेरा मिलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ठीक है फिर नहीं मिलते हैं। राधिका और ईशिका के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, लेकिन राधिका और ईशिका का इस तरह इनकार करना अरमान को अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से बोला, देखो ईशिका, अब इस तरह तुम मना नहीं कर सकती हो। मिसेस सिंघानिया, काफ़ी इसे समझाइए। अभिमन्यु राजवंश पहले ही जल्दी से किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता है। उसके पास्ट प्रॉब्लम्स होने की वजह से दिल्ली की किसी भी बिजनेस फैमिली के साथ उसकी नहीं बनती हैं। अगर ये मेरे अंकल से मिलेगी तो बाकी सबसे बिगड़े हुए रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सपोर्ट की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, ईशिका ने सिर हिलाकर कहा। अरमान उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। तुम जानती भी हो कि नकुल राजवंश की एक बेटी भी है जो दिल्ली की एक पावरफुल फैमिली जिंदल फैमिली की बहू बनने वाली है। उनके सहारे पर वो अपनी पोजीशन और स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे और कल को वो अभिमन्यु को सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे। ईशिका ने बेपरवाही से सिर हिलाया और कहा, माँ आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अभिमन्यु के पास हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहता है। उसकी पोजीशन से उसे हटाना इतना आसान नहीं है, वैसे भी ज्यादा शेयर्स उसके पास हैं। ईशिका और अरमान में बातों ही बातों में बहस शुरू हो चुकी थी। अरमान ने उसे काटते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुम जानती हो कि वो लड़की जिंदल खानदान की बहू बनना चाहती है और उसने उनके दम पर दिल्ली में होने वाले अल्जाइमर मेडिसिंस के क्लिनिकल ट्रायल में वसुधा राजवंश को जगह दिलाती है। जब मिसेज राजवंश ठीक हो जाएंगी तो वो बदले में उनसे शेयर्स मांगेगी और इससे अभिमन्यु के पास शेयर्स कम हो जाएंगे, फिर उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि वहां दादी को जगह मिल गई है, ईशिका ने हैरानी से पूछा। क्योंकि हमारी पहचान ही इतनी ज्यादा है, तुम जानती हो दिल्ली की 5 पावरफुल फैमिलीज में से हम एक हैं। तुम मेरे अंकल से मिलो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे और इसका फायदा अभिमन्यु को भी होगा, वो उसकी हेल्प करेंगे, अरमान ने जवाब दिया। ईशिका ने कुछ पल सोचा। अरमान को लगा कि वो उसे हाँ कहने वाली है, लेकिन तभी वो बोली, मेरे लिए मेरी माँ काफी है तो मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो तुम जा सकते हो। अरमान को ईशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो हाँ नहीं कह रही थी। उसका इतनी देर का समझाना बेकार गया। अरमान ने मुंह बनाया और कहा, यहाँ बड़े बड़े लोग उनसे मीटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं और वो जब तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम मना कर रही हो। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, पता नहीं मैं ऐसे ही पैदा हुई थी, ईशिका ने कंधे उचका कर कहा। तो अरमान वहां से निकल गया। जाते वक्त अरमान ने ईशिका की आवाज़ सुनी जो बार बार राधिका को कभी दवाई के लिए तो कभी पानी के लिए पूछ रही थी। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, ये मामा करते हुए अपनी माँ के पीछे क्यों पड़ी है, इसे देखकर मुझे अपने 5 साल के भतीजे की याद आती है जो दिन भर मेरी भाभी के पीछे मम्मा मम्मा करता हुआ घूमता रहता है। अरमान वापस होटल लौट आया था और वहाँ हॉस्पिटल में जो भी हुआ उसके बारे में उसने केशव को बता दिया था। अरमान ने केशव से कहा, आप बेवजह उस लड़की के लिए इतना कर रहे हैं, वो पहले से ही इतनी घमंडी है और उसे पता चला कि आप उसके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ लड़की में एटीट्यूड तो बहुत है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे, तभी तो उससे मिलना बनता है, केशव ने जवाब दिया। लेकिन उसने मना कर दिया है, अरमान ने चौंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो हमसे मिलने नहीं आ सकती है तो हम तो जा ही सकते हैं, केशव मुस्कुराते हुए बोला। मैं उससे मिलने के लिए सिंघानिया हाउस नहीं जा सकता लेकिन राजवंश हाउस तो जा ही सकता हूँ, सुना है वसुधा राजवंश की तबीयत खराब है तो क्यों ना उनसे मिलने चलते हैं। केशव ने भी बच्चों की तरह ईशिका से मिलने की जिद पकड़ ली थी। वहीं दूसरी तरफ ईशिका पूरी रात राधिका के साथ रुकी थी। अगले दिन राधिका को डिस्चार्ज मिल गया था। वो सिंघानिया हाउस जाना चाहती थी लेकिन राधिका ने उसे राजवंश हाउस जाने की सलाह दी क्योंकि वसुधा की तबीयत ठीक नहीं थी। इशिका तैयार होकर जब राजवंश हाउस पहुंची तो वो सीधे वसुधा के विला की तरफ बढ़ने लगी। वहां जाकर उसने देखा कि बाहर की तरफ बने लिविंग एरिया में नक्श और नकुल बैठे हुए थे। उनके साथ में एक लड़की भी थी। प्रशांत उनसे दूर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इशिका ने उस लड़की की तरफ गौर से देखा तो उसकी शक्ल काफी हद तक नकुल से मिल रही थी। जरूर वो नक्श की बहन नायरा की। उसके बारे में कल से सब बात कर रहे थे। नायरा उम्र में लगभग 27 साल के आसपास थी। हल्का गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें और कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ वो वहां पीच ऑफिस सूट में बैठी थी। नकुल उसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहा था तो नक्श उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। नकुल ने नक्श की तरफ देखकर हल्के गुस्से में कहा, मैंने सुना है कि आयशा को मेंटल असाइलम भेज दिया गया है। ऐसे में उससे डिवोर्स पेपर साइन करवाने मुश्किल होंगे। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की नाक कट गई है। नायरा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, डैड आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं। हमारे लॉयर्स कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि वो शादी से पहले ही पागल थी और उसने ये बात हमसे छुपाई थी। इसके बाद आसानी से तलाक भी हो जाएगा और हमें उसे मेंटेनेंस में कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। नायरा के इस सुझाव पर नक्श जहां खुश हो रहा था तो नक्श चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। नकुल ने तुरंत नक्श को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्मानी चाहिए, ये तुमसे उम्र में बड़ी है। तुम इसकी इज्जत करने के बजाय उल्टा इसकी इंसल्ट कर रहे हो। आज इसकी वजह से हमारे पोजीशन स्ट्रांग होने जा रही है। नक्श को डांटने के बाद नकुल ने नायरा की तरफ देखकर कहा, नायरा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैंने तुम्हारे दादा से बात कर ली है, अब तुम इसी फैमिली में रहोगी। लेकिन डैड मुझे यहाँ रहना सही नहीं लग रहा है, नक्श को मैं पसंद नहीं हूँ और आपकी वाइफ भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेगी, नायरा ने सीधे सीधे कहा। मुझे किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, हमें तुम्हारा एहसान मानना चाहिए, ना कि इस तरह तुमसे झगड़ा करना चाहिए, नकुल ने जवाब दिया। इशिका को उनकी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अंदर जाने लगी तभी उसके कदम अचानक रुक गए क्योंकि नायरा ने कुछ ऐसा ही कहा था।
नायरा ने नकुल से कहा, मेरे पास एक बीच का रास्ता है जिससे नक्श भी नाराज नहीं होगा और मैं इस घर में भी रह पाऊंगी। आप तो जानते हैं ना कि मैं दादी की केयर के लिए यहाँ पर आई थी, तो क्यों ना मैं दादी के घर पर रहूं। बस हाँ, मेरे यहाँ रहने से इशिका आंटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नायरा ने इशिका को आंटी कहा था जबकि वो उम्र में उससे बड़ी थी। इशिका को ये सब सुनना काफी अजीब लग रहा था। नायरा ने इशिका को भी देख लिया था तो वो खड़े होकर बोली, आंटी आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से दादी की केयर करने के लिए मेरा इस घर में रहना ही सही होगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे? नकुल ने कहा, अभिमन्यु तुम्हारी उम्र का है और वो यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इस तरह यहाँ रहना सही रहेगा। प्रशांत उनसे थोड़ा दूर खड़ा था। उसने जब उनकी बातों को सुना तो वो तुरंत उनकी तरफ आते हुए बोला, अगर नायरा इस घर में रहना चाहती है तो क्या दिक्कत है? ऐसा करो, तुम और अभिमन्यु अपना सामान पैक करो और मुख्य विला में रहने के लिए आ जाओ। वो घर काफी बड़ा है, थर्ड फ्लोर पूरी तरह खाली है, तो तुम दोनों वहां रह सकते हो। इशिका को उसका प्लान समझते देर नहीं लगी। नायरा काफी चालाक थी। वो जानबूझकर अभिमन्यु और इशिका को वहां से निकालना चाहती थी ताकि उनकी एब्सेंस में दादी को बहकाकर शेयर्स के पेपर्स पर साइन करवा सके। इशिका ने तुरंत जवाब में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है। इशिका का इस तरह इनकार करना प्रशांत को अच्छा नहीं लगा। वो सीधे सीधे उसके ईगो को चैलेंज कर रही थी। प्रशांत ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे मना किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। प्रशांत की बात को आगे बढ़ाते हुए नकुल ने कहा, तुम हम सबकी इज्जत नहीं करती हो, लेकिन ये तुम्हारे ससुर लगते हैं, कम से कम इनका तो लिहाज कर लो। मैंने पहले ही कहा था कि अभिमन्यु ने गलत लड़की से शादी की है, ना कोई क्लास है और ना कुछ और। आज इसकी जगह कोई बराबरी की लड़की होती तो अपने से बड़ों का सम्मान करती। नायरा ने नज़र नीचे की और मासूम बनते हुए कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ क्यों नहीं रहने देना चाहती हैं। दादी जो दवाइयाँ ले रही हैं वो बाहर से इम्पोर्ट होती है और मुझे इसका सारा डेटा उन्हें देना होगा। दादी वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए रिसर्च सेंटर से मैंने डायरेक्ट दवाइयाँ यहाँ पर मंगवाई हैं। वो बार बार यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ रहूँगी तो दादी और उनके लिए सही रहेगा। नायरा की बातें इशिका को हैरान कर रही थी। उसने कल खुद डेटा देखा था, वहाँ मिसेज राजवंश का कहीं पर भी नाम नहीं था। ऊपर से दवाइयाँ बाहर ले जाने की इजाज़त तो कतई नहीं थी। इशिका कुछ कहती उससे पहले प्रशांत ने कहा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, आगे से हमारे फैसले पर सवाल मत उठाना। और जिस अभिमन्यु के दम पर तुम इतना उछल रही हो, एक बात याद रखना, उस जैसे लड़के तुम्हारी जैसी लड़कियों से जल्दी ही बोर हो जाते हैं। वो तुम्हें तलाक देकर छोड़ देगा और फिर किसके सहारे रहोगी तुम? किसने कहा वो अकेली है? अचानक एक सख्त आवाज़ आई और उन सबकी नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। वहां अभिमन्यु खड़ा था और सर्द निगाहों से उन्हें देख रहा था। अभिमन्यु को देखकर इशिका ने राहत की सांस ली। शायद अब उन दोनों को वहां से निकलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अभिमन्यु आगे आया और उन सबको इग्नोर करके इशिका से पूछा, मिसेस सिन्हानिया कैसी हैं आप? उन्हें होश आ गया है और अब तो डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया है, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर बताया। उसके बाद अभिमन्यु ने प्रशांत और नकुल की तरफ देखकर कहा, मेरी पत्नी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। रही बात किसी के सहारे की, तो मुझे नहीं लगता कि उसे किसी के सहारे की जरूरत है। उसके लिए मैं काफी हूँ, प्रशांत ने सिर हिलाकर कहा। तुम अभी भी इस लड़की का साथ दे रहे हो जो कल रात गायब थी? यहाँ मेरी माँ बेहोश पड़ी है और ये उस औरत से मिलने गई जिसके बारे में इसे अभी पता चला है कि वो उसकी माँ है, नकुल ने हंसते हुए कहा। वहाँ तो जाना ही था, अपनी माँ के सामने ये भी तो दिखाना है कि ये उसे प्यार करती है। अब माँ मिल गई है तो मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। इन सब के लिए अपना प्यार साबित करना भी तो जरूरी होता है ना डैड? नकुल की बातें सुनकर ऋषिका का मन किया कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन अभिमन्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सख्ती से बोला, आगे से अगर आपने मिसेस सिंघानिया के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। दूसरों के फैमिली की प्रॉपर्टी की चिंता मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हिस्से में कुछ ना आए। नकुल और नक्श के हिस्से में फिलहाल सिर्फ 20% शेयर्स थे और अभिमन्यु जिस तरह से धमकी देने के लहजे में बात कर रहा था उससे नकुल डर गया था। वो बहस आगे बढ़ती उससे पहले निवेदिता जल्दी से बाहर आई और उसने बताया दादी को होश आ गया है। इशिका और अभिमन्यु ने उन्हें वहीं पर छोड़ दिया और जल्दी से कमरे के अंदर आ गए थे। वसुधा नींद से जाग गई थी और थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। उन्हें देखकर वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं बस कॉल पर बात करने गया था, अभिमन्यु ने जल्दी से जवाब दिया। वो वसुधा के पास में आकर बैठ गया था। उसके बाद वसुधा ने मुस्कुराते हुए इशिका की तरफ देखकर कहा, अरे अंजलि तुम यहाँ मेरे पास आई हो, इस लड़के की बातों पर गुस्सा मत करो, ये रिश्तों की कद्र नहीं करता, पर तुम समझदार हो, कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उनकी बातें सुनकर ऋषिका और अभिमन्यु चौंक गए, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, दादी हम कौन हैं? आ बच्चे मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मुझे दादी क्यों कह रहे हो? वसुधा ने मुंह बनाकर कहा। इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वसुधा अभिमन्यु को प्रशांत तो इशिका को अभिमन्यु की माँ अंजलि समझ रही थीं।